ओम शांति। उन्नीस नंबर के रजिस्टर में 65 पेज पर 1987 का पैटिकुलर रिकॉर्ड है। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। पाप हैं कितने, पुण्य हैं कितने, देख ले जीवन में। दर्पण कौन सा? ज्ञान का दर्पण। मन रूपी दर्पण भी कहते हैं। मन में ही ज्ञान रहता है, तो ज्ञान रूपी दर्पण में अपना मुखड़ा देख ले। उरमाई, अब ये तो बच्चे समझ गए हैं, इनका नाम शिव तो नहीं है। वो तो है निराकार। इनका माना किनका? ब्रह्मा का। वो कौन? शिव। दूर क्यों कर दिया? वह जब ब्रह्मा के तन में बैठा हुआ है तो वह क्यों कह दिया? क्योंकि वो पार्ट भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला है। वह तो है निराकार। निराकार का मतलब निराकारी, निरहंकारी और निसंकल्प के स्टेज में रहने वाला निराकार। शिव भगवान हुआ आज। बच्चे समझते हैं कि निराकार शिव बाबा को ही कहा जाता है। किसने उवाच किया? शिव भगवान उवाच। अब बिंदु तो उवाच नहीं करेगा। उवाच मानो बोलना। और कोई मनुष्य मात्र के लिए नहीं कहेंगे। निराकार पतित पावन शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है। जो निराकारी निसंकल्पी स्टेज में रहने वाला है वो ही पतितों को पावन बनाने वाला है। वो ही सत्संग द्वारा बैठ समझाते हैं। इस तन द्वारा, ब्रह्मा तन द्वारा समझाते हैं या पतित से पावन बनाते हैं। इस तन द्वारा बैठ समझाते हैं, लेकिन ब्रह्मा के तन द्वारा पतित से पावन नहीं बनाते। गीता में तो भूल से लिख दिया है कृष्ण भगवान वाच। ये तो रंग हो गया। क्यों क्यों रंग हो गया? क्योंकि शिव तो निराकार होता है और कृष्ण तो साकार है। इसलिए बाबा ने समझाया है, पहले पहले बाप का परिचय दो। कोई को भी समझाना है तो और दूसरी बातें नहीं समझानी, पहले पहले बाप का परिचय बताओ। कि भगवान तो सबका एक है, उसे ही परमपिता परमात्मा कहते हैं। पिता को भी समझना है, तो अपनी आत्मा को भी समझना है। मनुष्यों को अपनी आत्मा का पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है। अंग्रेजी में कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ यानी आत्मा क्या वस्तु है। बल कैसे भी है प्रकृति के बीच में चमकता है जब सितारा, तो बस सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। आत्मा स्टार है, निराकार है, तो उनका बाप भी तो निराकार होगा, छोटा बड़ा तो नहीं हो सकता। जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा है। वो परमात्मा है सुप्रीम, सबसे ऊंच से ऊंच। तो पहले तो आत्मा को समझना है कि आत्मा किसकी संतान है, वो कैसे तपस्या के पावन बनती है। कैसे बनती है पति से पावन, कैसे बनती है और पावन से पति तो कैसे बनती है द्वापर युग से। वो कैसे पुनर्जन्म लेती है, वो बस तो कुछ भी जानते नहीं। पहले तो ये नॉलेज चाहिए कि आत्मा क्या वस्तु है। बापी आकर के आत्माओं को बतलाते हैं कि आत्मा स्टार निकल है, अति सूक्ष्म है, इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। इन आंखों से देखा जा सकता है, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को पहचाना जा सकता है। जैसे आत्मा को तीसरे नेत्र से पहचाना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, वैसे परमात्मा को भी ज्ञान के तीसरे नेत्र से पहचाना जा सकता है।
बाकी कोई देखने की या दर्शन करने की कोई चीज है नहीं। देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। मन हॉस्पिटल में कितना भी माथा मारे हैं आत्मा को देखने के लिए, परंतु आत्मा को देख नहीं सकते, अति सूक्ष्म है। पहले तो ये निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ। बाप उनको ही बैठ समझाते हैं, किनको, जो अति सूक्ष्म आत्माएं हैं। थोड़ा भी देहवान वाली आत्माएं होंगी, 83 जन्म लेने वाली, 82 जन्म लेने वाली, तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली होंगी। देहवान का छिलका तो जरूर उनमें रह जाएगा, तो उनको नहीं समझाते, किनको समझाते हैं। पूरे 84 जन्म लेने वाली जो आत्माएं हैं अति सूक्ष्म, यानी अति सूक्ष्म निराकारी स्टेज में रहने वाली, उन्हीं को बाप बैठ समझाते हैं। जिनकी आत्मा में 84 जन्मों का पैटर्न उधा हुआ है, उनको बैठ समझाते हैं। सत्युग में आने वाले तो बहुत ऐसे भी होंगे जो 82, 83 और 100 जन्म लेंगे। वो आत्मा अपने अपने निमित्त धर्म पिताओं से बैठ समझेंगे, चाहे आधारभूत धर्म पिताएं हूँ, चाहे बीज रूप धर्म पिताएं हूँ। और बीजों में भी दो प्रकार के बीज, सूक्ष्म बीज और स्थूल बीज। जैसे से मनुष्य शक्ति का सूक्ष्म बीज शिव सुप्रीम सोल और साकार बीज प्रजापिता, तो वैसे ही हर धर्म का सूक्ष्म बीज भी है तो स्थूल बीज भी है और आधार मूर्त भी है। तो जो जिस धर्म से कनेक्टेड आत्मा होगी, वो उसी धर्म के धर्म पिता से चाहे आधार मूर्त से चाहे बीज रूप से बैठ करके समझे। लेकिन बात किन को समझाते हैं? जो निराकार बाप है, जो अति सूक्ष्म है, सूक्ष्म से सूक्ष्म सुप्रीम सोल, वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को बैठ समझाते हैं जो पूरे 84 जन्म लेने वाले, वो उस ज्ञानी की गहराई को समझ सकेंगे। उनकी बुद्धि किसी देहधारी में अटकने वाली नहीं होगी कि देहधारी को या साकार कृष्ण को या साकार ब्रह्मा को भगवान बन करके मान करके बैठ जाए। बेसिक नॉलेज में भी उनकी बुद्धि कहाँ टिकेगी? कंसंट्रेशन में, डायरेक्ट ज्योति बिंदु से ऊपर। इसके लिए उन्हें ये भी जरूरत नहीं कि पहले ब्रह्मा का ध्यान करें फिर उसके बाद बिंदु की याद आए। फिर परमात्मा का भी रियलाइजेशन कराते हैं। पहला रियलाइजेशन कि मैं डायरेक्ट परमपिता परमात्मा की संतान 84 जन्म लेने वाली अति सूक्ष्म आत्मा हूँ। पहला रियलाइजेशन बच्चों को ये कराते, उनको बैठ समझाते हैं। और दूसरा रियलाइजेशन परमात्मा का कराते हैं कि परमात्मा कौन, कैसी आत्मा परमात्मा। कहते हैं परम पिता परमात्मा, पहला टाइटल कौन सा परम पिता, फिर दूसरा टाइटल परमात्मा। क्या दोनों एक ही शब्द है क्या? नहीं, परम पिता का मतलब जिसका कोई पिता नहीं। प्रजापिता का कोई पिता है? नहीं, प्रजापिता का तो पिता है, तो उसको तो परम पिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता को परम पिता नहीं कहेंगे। परम पिता तो सुप्रीम सोल सिर है, इसलिए वो टाइटल सबसे पहले रखा परम पिता। है कि नहीं? परमात्मा फिर परम पिता, पहले परम पिता फिर वो परम पिता। इंट्रोड्यूस किसके द्वारा होता है, व्यक्त किसके द्वारा होता है? परम आत्मा, यानी आत्माएं जो है जन्म मरण के चक्र में आने वाली, उन आत्माओं के बीच में जो परम पार्ट बजाने वाली है, परे के परे अति सूक्ष्म स्टेज में रहने वाली है, वो है परम आत्मा। ये दो जब तक मिले तब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करें। शिव के बगैर प्रजापिता व्यक्त नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष नहीं हो सकता संसार में। दुनिया नहीं पहचान सकती कि एडम या आदम कौन है, सृष्टि का आदि पुरुष कौन है। बिना शिव के प्रजापिता से जॉइंट हुए, और प्रजापिता के बगैर शिव निराकार ज्योति बिंदु की पहचान नहीं हो सकती, कोई उसे रियलाइज नहीं कर सकता। तो दोनों का मेल है। जैसे कहते हैं शिव शंकर, तो पहले नाम कौन सा है? शिव, बाद में शंकर। जैसे कहते हैं बाप दादा, तो पहले कौन? बाप पहले बड़ा होगा, फिर छोटा होगा। तो फिर परमात्मा का भी रियलाइजेशन कराते हैं, तो आत्मा थोड़ी ही करा सकती है। परमात्मा मेरा परिचय मैं खुद ही आकर के देता हूँ, मेरा परिचय और कोई दे नहीं सकता। इसलिए शास्त्र में भी कहते हैं, भक्ति में भी कहा है, जो ही जानो ते देव जनाई, और ज्ञान तो तुम्हें हो जाई। मतलब परमात्मा का परिचय परमात्मा के सिवाय कोई दे नहीं सकता। परमात्मा खुद ही रियलाइजेशन कराते, इनके पार्ट में कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। बाप कहते हैं मैं किसकी बीमारी आदि को ठीक करने थोड़े आता हूँ। किसी को संकल्प चले कि शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आए तो उनकी खांसी क्यों नहीं ठीक हुई? परमात्मा तो क्या नहीं कर सकता, तो परमात्मा ये धंधा करने के लिए नहीं आते हैं। इसके लिए तो जाओ शरीर के डॉक्टर के पास। मैं किसके लिए हूँ? मैं तो आत्मा जो पतित बन गई है उस आत्मा को पावन बनाने के लिए आया हूँ। ये तो जिस्मानी बीमारी आदि तो परम भोग है। तुम तो मुझे कहते ही हो पतित पावन नाले जिसको लोग ज्ञान का सागर आओ, हमको आकर के पावन बनाओ। ये नहीं कहते हो कि आओ और हमको आकर के ज्ञान सुनाओ, तो क्या शरीर को पावन नहीं बनाएगा? शरीर कंचन काया नहीं बनेगा क्या? शरीर को कंचन काया नहीं बनाएगा? बनेगा। अरे शरीरधारी के द्वारा शरीरधारी कंचन काया बनेगा। और जो सिर्फ आत्मा है सुप्रीम सोल, वो आत्मा को सुधारेगा। सुप्रीम सोल किसको सुधारता है? आत्मा को सुधारता है। मन बुद्धि रूपी आत्मा, मन बुद्धि रूपी आत्मा का सुधार करने वाला सुप्रीम सोल। और शरीरों का सुधार करने वाला जो पांच तत्वधारी होगा वही पांच तत्व के शरीर को सुधार सकेगा। उसके कनेक्शन से शरीर का कनेक्शन है। तो बताया तुम कहते ही वही पति तो पावन नाली फुल ज्ञान का सागर आओ, आकर के हमको पावन बनाओ। हमको माने किसको? आत्माओं को। राजयोग भी सीखो, पहले आत्माएं पावन बनेंगी, फिर बाद में शरीर भी पावन बनेंगे। तो उसने कैसे पार्ट बजाया? गीता है सर्वशास्त्र में शिरोमणि, जिस गीता से सती जी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। ठीक है, फिर बाल बच्चे आए। धर्म शास्त्र मुक्ति कौन सी है? गीता धर्मशास्त्र रामायण भागवत नहीं है। गीता है देवी देवता सनातन धर्म का मुख्य शास्त्र। फिर हाँ कुरान, बाइबल और धर्मपद बौद्धियों का मुख्य है गीता। जैसे ब्राह्मण, श्रीवंशी, चंद्रवंशी तीन धर्मों की स्थापना हुई। गीता से तीन धर्मों की स्थापना हुई। कहते हैं गीता माता संगम है ही ब्राह्मण धर्म। तुम जानते हो बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं जिससे हम सूत्र से ब्राह्मण बनती हैं। सुनाए रहे हैं, कौन से टाइम की बात है? अरे ये वाणी तो मुरली तो पहले की चली हुई है। तो उस समय जिस तने के द्वारा सुनाए रहे थे तो क्या कार्य हो रहा था उस समय? शूद्र से ब्राह्मण बनाया। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार ब्राह्मण बने पवित्रता को धारण करने वाले। मां हमको ज्ञान सुना रहे हैं जिसे हम शूद्र से ब्राह्मण बनते। फिर क्या होता है? ये तो फर्स्ट मशीन हुई। उसके बाद फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी भी नहीं। तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना और फिर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। क्या हमारी डबल मशीनरी है? अब हम शूद्रों को ब्राह्मण भी बनाते हैं। कोई ये कंप्लेंट न करे कि तुम नयों को ज्ञान क्यों नहीं देते। ऐसी बात नहीं, हम नयों को भी ज्ञान देते हैं, माना शूद्रों को भी ब्राह्मण बनाते हैं और ब्राह्मणों को देवता भी यही बनना है। परमात्मा बाप की श्रीमत पर हम मनुष्य को देवता बनाते हैं। परमपिता परमात्मा ने ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना की, कोई मनुष्य ने नहीं की। जैसे आत्मा आर्गन्स द्वारा कुछ भी कर नहीं सकती, आर्गन्स आर्गन से बगैर कुछ नहीं कर सकती। आत्मा आर्गन से बगैर कुछ नहीं कर सकती। दल से निराकार बाप को भी आर्गन तो चाहिए ना। माना पतितों को पावन बनाने के लिए क्या चाहिए? आर्गन चाहिए। इब्राहिम द्वापर युग में आया या इस्लाम धर्म की आत्माएं ऊपर से आई, क्या उनके अंदर ये संस्कार थे कि देवताओं जैसा अभिविकारी जीवन भी कोई होता है? ये संस्कार उनके अंदर होते हैं नहीं होते? ये तो देवता ही आत्माओं के अंदर संस्कार होते हैं कि अभिविकारी जीवन बिताना ये अच्छी बात है, यही देवत्व है। तो इब्राहिम और उसके जितने भी साल हो तो द्वापर युग से ऊपर से नीचे आए ढेर के ढेर, उनके रंग के रंग में आने से संग का रंग कैसे लगा? आर्गन्स के थ्रू या आत्मा ने सीधा सीधा संग का रंग लगाया? आर्गन्स के थ्रू। इंद्रियों के बगैर संग का रंग कैसे लगेगा? मुख से वाचा बोली जाएगी, दो भी इंद्रिय का संग हुआ। आंख से देखा जाएगा, दो भी इंद्रिय का संग हुआ। तो वो पावरफुल आत्माएं परमधाम से उतरती है और अनेक जन्म लेने वाले देवी देवताओं की आत्माएं जो नंबर वार पतित बनती, उन्होंने जो अव्वल नंबर पतित बनने वाली आत्माएं हैं, इस्लाम धर्म के आधारभूत ब्राह्मण बनने वाली आत्माएं, उनमें वो प्रवेश कर जाती और प्रवेश करके उनको संग का रंग पहले पहले लग जाता है। तो वो पहला तो करके दूसरे देश में चले जाते। बाकी जो दूसरे हैं उनको उनसे टक्कर लेनी पड़ती है। जो इस्लाम धर्म के आधारभूत बनने वाली आत्माएं होती है सबसे कमजोर, जिन्होंने बहुत कम ज्ञान लिया है परमात्मा बाप से। परमात्मा बाप का शारीरिक संग तो बहुत किया, यानी ब्रह्मा के थ्रू साकार में संग तो बहुत लिया, लेकिन ज्ञान का डोज नहीं ग्रहण कर पाया। तो ऐसी आत्माएं कमजोर रह जाती है, क्योंकि परमात्मा शिव की पढ़ाई उन्होंने नहीं पढ़ी। किसकी पढ़ाई पढ़ी? मनुष्य के संग का रंग लिया। तो वो कमजोरी जो है वो उनको द्वापर युग में जाकर के प्रकट होती। कमजोरी वह अभिमान की प्रत्यक्ष हो जाती, जो मर्द थी वो इमर्द हो जाती और वो सबसे कमजोर आत्माएं उस समय बन जाती। तो जो कमजोर पतित होते हैं उन्हीं में ऊपर से आने वाली आत्माएं प्रवेश कर जाती, उनको ऑक्यूपाई कर लेती और उनको कन्वर्ट करके अपने देश अपने धर्म में ले जाती। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला कि रावण जब से आते हैं तब से अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर देते हैं। भारतवर्ष भारतवासियों का देश अलग हो गया और अरब देश अलग हो गया। तो कई बच्चे अपन को आत्मा समझ बाप को याद करने में मुझते हैं। क्यों मुझते हैं? यह है संग के रंग की बलिहारी। जैसा संग वैसा रंग लगेगा। ब्रह्मा के जितने भी फोटो निकले दादा लेखराज के, उनमें किसी एक भी फोटो में निराकारी स्टेज दिखाई गई है क्या? जैसे धर्म पिता निराकारी स्टेज में दिखाए गए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, उनका चेहरा देखने से ही पता चलता है कि उनकी स्टेज निराकारी है। जैसे परम धाम में उनकी आत्मा लटकी हुई है। तो कृष्ण साकारी हुआ तो ब्रह्मा भी साकारी हुआ। तो साकारी का अगर बुद्धि से संग किया या साकारी को भगवान समझा तो आत्मा में निराकारी स्टेज के गुण आएंगे या साकारी दो अभिमान के गुण आएंगे? तो कमजोर रह गई ना। तो बुझते हैं, अरे तुम तो आत्मा हो ना, तुम्हारा बाप शिव है, निराकार बाप को भी आदर्श तो चाहिए ना। वो उन्हें आकर के समझाते हैं आत्मा का क्या रूप है और परमात्मा के क्या रूप है। ये तो कहने मात्र कह देते हैं कि आत्मा बिंदु है और परमात्मा भी बिंदु है, फिर अंतर क्या हुआ? फिर कोई अंतर हुआ क्या? परंतु उसमें कैसे अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, आत्मा में कैसे अलग अलग अविनाशी पार्ट भरा हुआ है आत्मा में, और परमात्मा में कैसे अलग पूर्ण पार्ट भरा हुआ है जो कभी मिटने वाला नहीं है, वो नहीं जानते। क्यों जो हो हर एक आत्मा में अनाथ पाठ भरा हुआ है जो परंपरा से चला आता है, इसकी कभी इंद नहीं होती है। पुरानी दुनिया की इंद हो तब नई दुनिया होती है। बाबा जाकर के पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? पुरानी दुनिया का इंद करते हैं, अंत करते हैं, तब नई दुनिया बनती है। प्रैक्टिकल में अंत न करें पुरानी दुनिया का तो नई दुनिया नहीं बन सकती। अंत कब होता है? अति होती है तो अंत होता है। पुरानी दुनिया माना विकारी दुनिया, विकृत दुनिया, तो विकृत दुनिया का अंत कौन करेगा? कोई ब्राह्मण में ताकत नहीं, मनुष्य में ताकत ही नहीं जो पुरानी दुनिया का अंत करे। नहीं तो इब्राहिम बुद्ध का ऐसी इतनी पावरफुल मनुष्य आत्माएं थी, इतने बड़े बड़े विस्तार में धर्म स्थापन किए, वो पुराने धर्मों का पुराने राज्यों का अंत करते, लेकिन अंत किसी ने नहीं किया। पुराने पन का अंत सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कर ही नहीं सकता। तो ये जो पुरानी विकारी दुनिया है इसमें विकारों की अति ला करके और उसका अंत करना, ये सिर्फ एक परमात्मा का, ये कोई मनुष्य आत्मा का कार्य नहीं है। विनाश कैसे होता है? अपवित्रता से होता है विनाश, और पवित्रता से होती है स्थापना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं और शंकर द्वारा विनाश में दूंगा। तो बताया हर एक आत्मा में अनादि पार्ट निभा हुआ है। इन तरह से बोल है ये पार्ट कभी मिटने वाला नहीं है। कोई शिकायत करे कि बाबा इस पार्ट की क्या जरूरत, परमात्मा ऐसा पार्ट क्यों बजाता है? तो बाबा क्या कहते? पार्ट तो निभा हुआ है, अविनाशी पार्ट है, वो मिट नहीं सकता। तुम कितने भी फापा मारो, उल्टे होके लटक जाओ, सब इकट्ठे होकर के, लेकिन ये पार्ट बंद नहीं हो सकता। कौन सा शंकर जो विष पीता हुआ दिखाया जाता है, ये अगर संसार का विष नहीं पिएगा तो दुनिया निर्विकारी नहीं बन सकती। अति होगी तभी अंत होगा, इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने के लिए बाप आए। ये क्या बात हुई? पाप में पाप बढ़ाने का रहम क्या होता है? ये भी कोई रहम हुआ? अगर पाप में पाप बढ़ाने का रहम बाप न करे तो अति का अंत नहीं होगा। इसलिए अंत समय में बाप को भी ये कार्य करना पड़ता है।
इस नंबर के रजिस्टर में 1987 का प्रातः क्लास,
दुनिया की इंद हो तब नई दुनिया बने, जब तक पुरानी दुनिया का विनाश नहीं हुआ, विकारी दुनिया का अंत नहीं हुआ, विकारी दुनिया का, तब तक नई दुनिया नहीं प्रत्यक्ष हो सकती। तो अंत कब होता है? अति होती है तब अंत होता है।
तो ये अति का कार्य, ये मनुष्य आत्माओं के बस की बात नहीं है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये बड़े बड़े धर्म पिताए आए, पावरफुल सोल, लेकिन अति का अंत नहीं कर सके और अति भी नहीं कर सके, क्योंकि ये न ज्यादा पति तो बनते हैं, न ज्यादा पावन बनते हैं। तो उनका अपना पार्ट मुदा हुआ है, बोल से पुरानी दुनिया का अंत नहीं कर सके। ये तो बाप का ही पार्ट है जो अति लाकर इस पुरानी दुनिया का अंत कराई देता है। सब त्रायमाम त्रायमाम करने लग पड़ते, बाबा ही आकर के पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, बाबा ही ओनली, और कोई दूसरा नहीं कर सकता। क्या पूछा? अभी कुछ पूछ रहे थे। बाप पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने आए हैं। अब दुनिया में पाप बहुत बढ़ चुके हैं ना, अब सहन नहीं हो रहे हैं, सब अशांत है, सब दुखी है। लेकिन कोई ये कहे कि अति न हो और अंत पहले ही हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अति होगी तभी ही अंत लगा हुआ है। तो बाप पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने आए हैं का मतलब क्या हुआ कि जो पापी हैं उन पापियों को और उकसाएंगे। क्या करेंगे? ज्यादा पाप करेंगे। तो क्यों? क्योंकि वो पापियों का भी बाप है। इसलिए मुरली में बार बार कहते हैं, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। बाप आया हुआ का मतलब व्हाइट वेन में भी तुम्हारा बाप है, और अगर तुम नहीं मानते हो, तुम अपनी फैमिली से नहीं चूकते हो, तो ब्लैक वेन में भी तुम्हारा बाप है। इसलिए पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने आए शंकर द्वारा विनाश, माना शंकर की प्रेरणा से विनाश होता है। तो क्या प्रेरणा बैठ करते हैं एक एक को कि तुम विनाश करो है? शंकर के द्वारा कोई प्रेरणा डायरेक्ट नहीं मिलती है। बाबा ने तो मुरलियों में बोल दिया कि तुम बच्चों को मास्टर शंकर बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है, शंकर का पार्ट शंकर को बजाने दो, तुम अपना पार्ट बजाओ, तुम्हें कौन सा पुरुषार्थ करना है? मास्टर ब्रह्मा बनना है, क्योंकि स्थापना करने वाली आत्माओं को प्राप्ति होगी, विनाश जो करेंगे उनको प्राप्ति नहीं होगी। शंकर को तो लंगोटिया यार दिखाते हैं, उनको कोई ताज तक पत्नी कोई है? कोई ताज दिखाया जाता है? पुरानी दुनिया में पुराने वस्त्रों में दिखाए जाते हैं, अधूरी वेश में। तो शंकर को भी सीधी बात नहीं मिलनी है क्या? किसको मिलनी है? लेनी किसको है? बच्चों को लेनी है ना? तो बच्चों को अगर स्थापना करनी है तो पालना भी करनी है राजा बनकर की, और अगर स्थापना नहीं करनी है, डिस्ट्रक्शन करना है, तो डिस्ट्रक्शन करना तो हजामों का काम है, बच्चों का काम नहीं है। तो मैं विश्व की बात सही नहीं लेता हूँ, मैं तुम बच्चों को विश्व की बात सही देता हूँ। तो बाबा ही आकर के पति दुनिया को पावन बनाते हैं। प्रेरणा देने का अर्थ क्या हुआ? बाप का तो डायरेक्शन है कि बच्चे ऐसे ऐसे कर्म करो, लेकिन जो बच्चे पूरा ज्ञान और धारण नहीं कर पाते हैं तो फिर वो उल्टी चलन चलते हैं। जिसको फॉलो करना चाहिए उसको फॉलो नहीं करेंगे, और जिसको फॉलो नहीं करना चाहिए उसी को फॉलो करेंगे। भक्ति मार्ग में एक कहावत है कि गुरु जो कहे सो करना है, लेकिन जो गुरु करता है वो नहीं करना है। गुरु के अंदर तो ढेर गुरु बड़े पड़े हुए हैं, हमारे अंदर वो सिद्ध नहीं है,
अगर हम गुरु को फॉलो करेंगे कर्म में तो माफ खा जाएंगे। तो परमात्मा तो जगत गुरु बन करके आता है। जो परमात्मा पाठ करावन आ रहा है उसको फॉलो नहीं करना है। फॉलो किसको करना है? करणहार पाठ को फॉलो करना। अगर फॉलो ही करना है तो डायरेक्शन को फॉलो करना है। बात जो कहे वो मानना है, बाकी कर्मों में फॉलो नहीं करना। बाबा ने समझाया है मुख्य धर्म शास्त्र हैं चार, जिससे धर्मों की स्थापना होती है। पहले है गीता, फिर इस्लामी बौद्ध धर्म का शास्त्र, फिर वृद्धि होती जाती है। लेकिन और धर्मों के जो शास्त्र हैं वो कोई विनाश करने वाले नहीं है, फैमिली प्लानिंग करने वाले नहीं है, लेकिन गीता है फैमिली प्लानिंग का था। जितनी भी विकारी दुनिया है वो सब खलास हो जाएगी। इसमें गाया जाता है श्रीमद् भगवत गीता। और कुछ शास्त्रों को ऐसे नहीं कहेंगे, श्रीमद् भगवत यानी भगवान की गाई हुई। यह है निराकार भगवत गीता। व्यास भगवान कहते हैं परंतु वह तो मनुष्य हो गए। बाप कहते न तो मैं मनुष्य हूँ और न मैं देवता हूँ। मेरे अंदर मनुष्यों के भी गुण नहीं है और मेरे अंदर देवता के भी गुण नहीं। खोजना क्या है? ब्रह्मा की तरह शिव बाबा आते थे तो वो तो देखो कैसा अच्छा पाठ बजाया। भविष्य में भी किसी की आत्मा होगी तो सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम होगी। वो जो तो उनका पाठ आया हुआ है, उनका पाठ धारी है। लेकिन नहीं, परमात्मा पाठ मनुष्यों के पाठ से और देवताओं के पाठ से भी निराला। तुम सोचते भी नहीं कि हम क्या गा रहे हैं मंदिर में जाकर। मंदिर में जाके कह देते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। कभी बुद्धि में भी नहीं आता है कि हम बालक तेरे हैं तो कब बालक थे या अभी ऐसे ही बन लगाया हुआ। कभी बालक बने होंगे ना प्रैक्टिकल में, तो बालक बने होंगे तो जरूर आपस में भाई बहन भी बने होंगे। तो परमात्मा बाप ने भाई बहन बनाया होगा। सहज तरीके से नहीं बने होंगे तो फिर तेरे रास्ते से भी बनाए होंगे। तो तुम अपन को शिव बाबा का बच्चा समझो। व्यस्त व्यवहार में रहते अपन को शिव बाबा का बच्चा समझो। तो बाबा ने मुख्य शास्त्र भी बताए, बाकी भागवत रामायण आदि कोई धर्म शास्त्र नहीं है। धर्म शास्त्र उसको कहा जाता है जिससे धर्म स्थापन होता है। वेदों से कौन सा धर्म स्थापन हुआ? कुछ भी नहीं। महाभारत भी धर्म शास्त्र नहीं है, बाइबल धर्म शास्त्र है। गीता से तो देवता धर्म स्थापन हुआ, बाकी भागवत रामायण है इनमें तो दंत कथाएं लिख दी है, वो धर्मशास्त्र तो नहीं है। बाप तुम बच्चों को मूल बात समझाते हैं कि अपन को आत्मा समझो। वो फिर कहते हैं आत्मा तो निर्लेप है, तो उल्टा हो गया ना। क्या आत्मा निर्लेप है या परमात्मा निर्लेप है? परमात्मा पार्ट संसार में प्रत्यक्ष होगा तो परमात्मा पार्ट के ऊपर किसी का प्रभाव स्थायी नहीं पड़ सकता। स्थायी क्यों कहा? अल्पकाल का पड़ सकता है क्या? अल्पकाल का प्रभाव पड़ सकता है क्या? है
अल्पकाल का इसलिए पढ़ सकता है कि जो सुप्रीम सोल है सर्वशक्तिवान वो किसने आता है, वो साकार में आता है। तो जो साकार है उसमें कमजोरी हो सकती है, बाकी निराकार में कोई कमजोरी नहीं हो सकती। तो साकार को संग का रंग बच्चों पर लगता है, ये सुबानी में बोला तो बाप दादा चाहे तो भी वापस जा सकते हैं, माना रामकृष्ण की सोल भी चाहे तो वापस जा सकती हैं, लेकिन किसके लिए रुके हुए, बच्चों के लिए रुके हुए। तो जरूर बच्चे अभी इन कंपनी की सोच में है, तो बच्चों का संग का रंग उस बाप को और दादा को लगता है, लेकिन वो बाप उनमें प्रवेश करता है इसलिए वो संग का रंग स्थायी नहीं रह सकता है। वैसा सुनावर्ष मिलता है तो जो कहते हैं कि आत्मा निर्लिप्त है तो ये तो उल्टा हो गया। आत्मा को तो जरूर लक्षित लगता है, आत्मा माने जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली है, चाहे वो प्रजापिता की सोल हो और चाहे वो 500 करोड़वीं मनुष्य आत्मा हो, लक्षित तो उनको जरूर लगेगा। किसी को अल्पकाल का लगेगा, किसी को दीर्घकाल का लगेगा, लेकिन अंतर क्या हुआ? प्रजापिता को जो लक्षेप लगेगा और दूसरी मनुष्य आत्मा को जो लक्षेप लगेगा उसमें अंतर क्या होगा? प्रजापिता और ब्रह्मा में तो परमात्मा शिव की प्रवेशता होती है, इसलिए शिव पावरफुल सोल जो सर्वशक्तिमान है उसकी प्रवेशता होने के कारण वो संग का रंग स्थायी नहीं ठहर सकता, वो थोड़े समय के लिए रह सकता है, बाकी स्थायी नहीं रह सकता। तो ये नहीं कह सकते कि आत्मा निर्लेप है, प्रजापिता हो चाहे ब्रह्मा हो, आत्मा किसी की निर्लेप नहीं है, आत्मा को सबको निर्लेप लगता है। इस पति तो मनुष्य शक्ति में कोई भी पावन नहीं है, सब पतित है, एक भी पावन नहीं हो सकता। और पावन जो सृष्टि बनेगी वो नई दुनिया में एक भी पतित नहीं होगा। वास्तव में आत्मा ही शरीर द्वारा खाती है, वासना लेती है, तो परमात्मा लेता है। भोगने वाला कौन? आत्मा या परमात्मा? आत्मा भोगती, तो जो भोगेगा उसको लक्षित भी लगेगा और जो अभोक्ता होगा उसको नहीं लगेगा। दुख सुख आत्मा ही फील करती है, महात्मा पाप आत्मा कहा जाता है ना, ये आत्मा को परमात्मा कह दिया है, ये तो राम होगी। सेंटर पर आने वाले कई बच्चों को ये भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है, तुम खुद कहते हो आत्मा स्टार है, उसमें सारा पाइट भरा हुआ है, आत्मा अति सूक्ष्म है, आत्मा को कब देख नहीं सकते, साक्षात्कार से कुछ प्राप्ति नहीं होगी, प्राप्ति किससे होगी? तुम अपने पुरुषार्थ से पढ़ाई पढ़ करके जो बुद्धि से निश्चय करोगे कि ये परमात्मा पार्ट है, उसी से फायदा होगा। कोई ये कहे कि हमें साक्षात्कार हो तब हम मानेंगे कि ये परमात्मा पार्ट है, या अमुक आत्मा का ये पार्ट है, या ये जगदम्बा का पार्ट है, तो साक्षात्कार से वो स्थायी छाप छूटने वाली नहीं है। तो तुमको बुद्धि से ही निश्चय करना पड़ेगा कि हम आत्मा अति सूक्ष्म, जैसे विवेकानंद का मिसाल सुनाते हैं कि हमको ज्योति का साक्षात्कार हुई, उसी से निकल मेरे में समय, उसी से निकल रामकृष्ण परमहंस में से आत्मा निकल मेरे में समय, ये साक्षात्कार हुआ विवेकानंद को। परंतु वो तो साक्षात्कार हुआ ना, प्रैक्टिकल तो नहीं हुआ। बाकी सामान्य की तो बात ही नहीं होती है कि कोई आत्मा किसी दूसरी आत्मा में समाई जाए, आत्मा लीन हो जाए, ये कोई बात नहीं होती है। ये आत्मा किसी आत्मा में लीन नहीं हो सकती। लीन होने का वास्तविक अर्थ क्या है? समाये जाने का अर्थ क्या है? जो संकल्प एक के वही संकल्प दूसरे के हो जाए, संकल्प मात्र में कोई भेदभाव न रहे, तो ये है आत्मा का परमात्मा में समाये जाना। जो बाप का संकल्प सो बच्चों का संकल्प। तो यहाँ भी देहद के रामकृष्ण है, परमहंस का पाइट बजाने वाली आत्मा है, भूल को भूल पाइट बजाने वाली आत्मा है। तो उनमें उनकी आत्मा हमारे अंदर कैसे समाई जाएगी? आत्मा नहीं समाई जाएगी, लेकिन जो गुण धर्म है, वो गुण धर्म, वो संस्कार, वो स्वभाव, वो हमारे अंदर आ सकता है। तो कितनी फालतू महिमा लिख दी साक्षात्कार हुआ, उससे प्रारंभ क्या बनी? कुछ भी नहीं। निचला उनको चतुर्भुज का साक्षात्कार हो और वो गुण हो जाते हैं, तो साक्षात्कार होने से क्या तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे? सिर्फ साक्षात्कार करने मात्र से चतुर्भुज विष्णु थोड़े बन जाएंगे, लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप थोड़े बन जाएंगे। एम ऑब्जेक्ट का भी सिर्फ साक्षात्कार हुआ, बाप का भी क्या साक्षात्कार होगा? जैसे आत्मा स्टार है वैसे वो परमात्मा भी स्टार है, तो साक्षात्कार भी क्या समझेंगे? आत्मा भी बिंदु और परमात्मा भी बिंदु, तो पैसिबिलिटी का पता कैसे चलेगा? अंतर कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सी आत्मा का साक्षात्कार किया और कौन से परमात्मा का साक्षात्कार किया? आत्मा भी देर की देर, रूप दोनों का एक जैसा दिखाते हैं। अर्जुन ने कहा कि हजारों सूर्यों से जाती तेजो में हम सहन नहीं कर सकते, बस करो बस करो। अब ऐसा तो कुछ भी नहीं कि कोई स्थूल हजार सूर्य इकट्ठे हो जाए और उनकी संगठित शक्ति लेसर किरणों को माथे का आकर के गिरे, ऐसा कोई स्थूल तेज की बात नहीं है। तेज मन ज्ञान का तेज, ज्ञान का ऐसा होश होगा, ऐसा तीखा ज्ञान चलेगा, ऐसी तीखी बातें बाप सुनाएगा जो बच्चे सहन नहीं कर सकेंगे। आगे तो बहुत को साक्षात्कार होता था, जो सुना वो साक्षात्कार हो जाता था, समझते हमारी मनोकामनाएं पूरी हों, ईश्वर का साक्षात्कार हो तो हो जाते। इसमें फायदा कुछ भी नहीं है। बाप कहते हैं मैं राजयोग सिखला करके पति से पावन बनाने आया हूँ। क्या, किस लिए आया हूँ? पतित से पावन बनाने आया हूँ और उसके लिए क्या करता हूँ? राज योग सिखलाता हूँ जिसमें राज भरा हुआ है। ये राज क्या सबकी समझ में आ जाएगा कि पवन तुम बैठ करके तुम वो राज समझाने लगो तो सबकी समझ में नहीं आएगा। उसकी भी कोई लिमिट होगी कि परमात्मा पास से ज्यादा कितनी आत्माएं कनेक्शन में रह सकती है, कनेक्शन जोड़ सकती है, उसकी भी लिमिट होगी ना। साकार में तो जरूर लिमिट होगी, निराकार और आकारी स्टेज में लिमिट नहीं होती। है तो नहीं मुर्दे में सांस डाल दूंगा। तो परमात्मा है तो चाहे जो कुछ कर सकते हैं, बीमारी है तो जाओ डॉक्टर के पास, है तो जाओ। बाबा जी क्यों कहते हैं सामान्य बीमारी ठीक हो जाए। हम तो आया हूँ तुम्हें पावन बनाने, मेरे आने का अहम आदत है पति को पावन बनाना। पावन बनू तो पावन दुनिया में चलेंगे, जरूर पति की दुनिया का विनाश होगा तब तो पावन दुनिया स्थापन होगी। क्या पति की दुनिया का अंत जरूर होना चाहिए, और अंत तब होगा जब अति होगी। तो घबराओ मत, किस बात से है? हाँ, उस विनाश से जो हाल हाल विष निकलता है उससे घबराने की दरकार नहीं है। जो लेने आए हैं उसको लेने दो, और तुम अपना पुरुषार्थ करो। तुम्हारा काम है अमृत लेना, सागर में विष भी भरा हुआ है, कचरा भी भरा हुआ है ढेर सारा, और सागर में रत्न भी ढेर सारे भरे हुए हैं। क्या लेना है तुम्हें? रत्न लेना है ना। अगर कचरा लेना शुरू कर दिया तो कचरे में डर के रह जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कहाँ चले गए। तो महाभारत लड़ाई के बाद क्या हुआ? वो तो कुछ भी रिजल्ट नहीं दिखाया। तुम बसु का भी शक्ति के आदि मध्य अंत का राज समझाना है। तुम भारतवासियों को तो गीता पढ़ी, कैसे भी गीता ज्ञान अमृत, अमृत माना जो मंथन करके निकाला जाता है उसे कहते हैं अमृत। शास्त्र में वृत्तांत है ना, अमृत कैसे निकला? सागर का मंथन किया। कौन सा सागर? पानी के सागर का। पानी का मंथन करेंगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा। ज्ञान सागर का मंथन किया तो उसमें से मंथन करने से अमृत निकला। तो जो अमृत निकला वो ही सार है। क्या? जो मंथन से निकला वही सार चीज है। तो गीता पढ़ लेंगे भारतवासियों को, अपना धर्मशास्त्र छोड़ दूसरे का सुनना और पढ़ना ये तो दुविचार हो गया। कहते हैं हम अपने को भारतवासी, और भारतवासी कहते हुए भी समझते हुए भी दूसरों के धर्मशास्त्र पढ़े और सुन। मुख्य है गीता, परंतु उसने कृष्ण का नाम डाल दिया है। मुख्य है तो मुरली दीदी दादी दादाओं या किसी मनुष्य मात्र की जो वाणी चलती है और वाणी साइक्लोन टेल की जाती है और सुनाई जाती है, टेस्ट की जाती है, वो कोई परमात्मा की वाणी नहीं है। उससे दुर्लता धर्म स्थापन नहीं होगा, क्योंकि जो भी धर्म पिता सुनाता है उसे सुनाए हुए का भूल गई जो प्रति सुनाना किसी के द्वारा हो नहीं सकता। दूसरा जब सुनाएगा या लिखेगा ग्रंथ तो उसमें कुछ न कुछ मिसाइट जरूर हो जाएगी। तो गीता ने कृष्ण का नाम डाल दिया है। कृष्ण तो सती का प्रिंस था, उनकी आत्मा 84 दिन में ले फिर अंत में आकर के नारी लेती है। कितने दिन में ले? 84 दिन में लेती है, 84 दिन में लेकर फिर अंत में आकर के नारी लेती है। अंत में मान अंत के भी अंत में, ऐसी क्यों बोलते मुरली में? जरूर बिल्कुल जब अंतिम पीरियड होता है, विनाश जब बिल्कुल सामने खड़ा हुआ होता है, तब वो कृष्ण की आत्मा कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ती है परमात्मा बाप से। वो कृष्ण बनने के लिए नारी लेती है, किसी नारी लेती है?
सुनो बाबा ये नानू किसी के बुद्धि में नहीं है क्या कि कृष्ण की भी आत्मा अभी पढ़ाई पढ़ रही है वो समझते हैं कृष्ण भगवान है पढ़ाई पढ़ाने वाला है राज्य को सिखाने वाला है कौन समझते हैं भक्तिमान समझते हैं ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे भक्त नहीं है जो समझे रहते हैं कि कृष्ण की सोल ब्रह्मा ही भगवान है वो राज्य को सिखलाने वाला है ये नानी भी किसी की बुद्धि में नहीं है कि कृष्ण गीता का भगवान नहीं है आत्मा का ही ज्ञान नहीं है क्या पहले अपन को आत्मा के स्वरूप में स्थित करना पड़े आत्मा अभिमानी स्टेज में मनुष्य बिल्कुल पत्थर बुद्धि है उनको पार्श्व बुद्धि बनाने में मेहनत लगती है दिलवाड़ा मंदिर में देखो आज देव का काला चित्र है फिर ऊपर में सोने के बने हुए हैं क्यों नीचे जो तपस्या में बैठे हैं वो काले क्यों हैं और ऊपर जो मंदिर में चित्र रखा हुआ है वो सोने का सच्चाई का प्रतिशत रखा हुआ है क्योंकि तपस्या के पीरियड में तपस्या कब होती है तपस्या कर रहा है कोई इसका मतलब कर्म प्रधान है तो तपस्या कर रहे हैं नहीं तो परमात्मा अगर परमात्मा का स्वरूप बन गया या देवता बन गया तो देवताएं क्या तपस्या करते हैं जब सत्व प्रधान बन गया संपूर्ण बन गया तो तपस्या करने की दरकार नहीं रहती साधना तब तक की जाती है जब तक इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है तब तक साधना करने की दरकार है और जब इंद्रिया सद गई कंट्रोल में हो गई तो कोई प्रकार की साधना की दरकार नहीं है तो दिलवाड़ा मंदिर में देखो क्या देखो आदिदेव का काला चित्र है फिर ऊपर में सोने के बने ऊपर में मन जब उनकी ऊंची स्टेज हो जाती है पुरुषार्थ करते करते तपस्या करते करते तो उनको ऊंची स्टेज में बैठाया गया जब ऊंची स्टेज में कोई चीज बैठाई जाती है तो देखने वाले किधर देखेंगे ऊपर देखेंगे ना ऊंचा समझ के देखेंगे या नीचा समझ के देखेंगे ऊंचा समझ के देखेंगे जो घृणा करने वाले होंगे वो न चाहते होंगे भी उसको ऊपर ही देखेंगे जगदम्बा महावीरिणी है आदि देवी की बेटी सरस्वती है क्या कहा आदि देवी की बेटी सरस्वती है वो कौन मंदिर तो अनेक बनाए हुए यादगार मंदिर बने हुए इसका मतलब आदि देव
तो गीता मंदिर जो बने हैं किसकी यादगार जरूर गीता का ज्ञान किसी ने आकर के सुनाया होगा ना गीता मंदिर कहो या गीता पाठशाला कहो ये वो ही कही जाएगी जिसने भगवान आकर के गीता का ज्ञान सुनाई तो जब गीता ज्ञान सुनाएगा तो सुनने वालों को पता तो होना चाहिए कि गीता माता की रचना करने वाला कौन माता की रचना कौन करता है पिता करता है तो जरूर चैतन्य में गीता माता भी हुई और चैतन्य में कोई गीता पति भगवान भी हुए किसको पता ही नहीं बड़े बड़े करोड़पति बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं जानते कुछ भी बाप आकर के सारे ड्रामा कर रहा था उसको समझा कि गीता कौन सी है चैतन्य और गीता माता कौन को गीता पति भगवान कौन है तो कौन हुई गीता माता गीता माता है सब का माई बाप और धर्मशास्त्र तो बाद के हैं लेकिन गीता है सबकी माई बाप तो कौन हुई फिर गीता आदि देवी तुम और कुछ नहीं समझते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करते हो ये भी अच्छी बात है बाप को तो याद करते हैं ना बाबा है या आत्माओं का बाप। मरने के समय शिव बाबा की सिवाय और कुछ भी याद न आए तो भी तुम स्वर्ग में आ जाओगे। स्वर्ग में आकर के महाराजा महारानी बन जाएंगे ये नहीं कहा। शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ेंगे कोई दूसरा याद ना आएगा तो भी तुम स्वर्ग में आ जाओगे। ये कोई कम बात हो रही है क्या? क्या कम बात नहीं है? स्वर्ग में आना, स्वर्ग के दूसरे जन्म में आ जाए तो ये बड़ी बात हो जाएगी। दूसरे तीसरे आठवें जन्म में अगर हम आ जाए तो ये बड़ी बात हो गई है, तो छोटी बात हो गई। बड़ी बात ये है कि जो परमात्मा बाप डायरेक्ट आकर के स्वर्ग की रचना रखते हैं, जो नई दुनिया रखते हैं, उस दुनिया में हम आ जाए, यानी इन्हीं आंखों से हम स्वर्ग देखें, ये है बड़ी बात। इसलिए बताया कि बाप के सिवा और कुछ भी याद ना आए तो स्वर्ग में आ जाएंगे, ये कोई कम बात हो रही है। माने कितने जन्म के स्वर्ग में, इक्कीस जन्मों में से पहला जन्म है संगमी भी स्वर्ग, जो परमात्मा डायरेक्ट बाप आकर के जिसकी रचना करते हैं, उसमें जाना कोई कम बात नहीं है। पहले पहले तो अपन को आत्मा निश्चय करना, वो है फिर परमपिता परमात्मा और नाम उनका शिव है। आत्मा भी बिंदी रूप है, परमात्मा भी बिंदी है। जैसे आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, परमात्मा का भी पार्ट है। क्या पार्ट कहाँ बजाया जाता, परम धाम में या सूक्ष्म वतन में? पार्ट तो जरूर स्थूल वतन में बजाया जाए, तो परमात्मा पार्ट जब स्थूल वतन में होगा तो परमात्मा पार्टधारी इस स्थूल वतन में प्रत्यक्ष होना चाहिए ना? उसका पार्ट है ही पतितों को पावन बना। सबसे बड़ा पार्ट किसका? परम पिता परमात्मा का सबसे बड़े से बड़ा पार्ट। और जो पार्ट बजाता है वो पार्ट की पेक्युलरिटी क्या बताई, कौन सा पार्ट बजाता है? पतितों को पावन बनाने ज्ञान सुनाने का पार्ट है, ऐसे नहीं का? कौन सा पार्ट? पतितों को पावन बनाने का पार्ट। भक्ति में मैं सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ, जीवित दृष्टि की चाबी बाप के हाथ में, ये भी जाना में पार्ट बना हुआ है। नौदा भक्ति से साक्षात्कार होना ही अशुद्ध कामनाएं शैतान पूरी करता है। क्या कहा? अशुद्ध कामनाएं तुम्हारी है वो शैतान पूरी करता है। शैतान कौन? रावण कौन? मानगर। ये जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं वो मेरा काम नहीं। रिद्धि सिद्धि सीखना ये किसका काम है, सिखाना किसका काम है? हठ योगियों का काम है। उस रिद्धि सिद्धि से मनुष्य किसको सुख देवे वो कामना मैं पूरी नहीं करता हूँ। जो रिद्धि सिद्धि सीखते हैं उस रिद्धि सिद्धि से बहुतों को सुख भी मिलता है। अभी सभी बच्चे पुरुषार्थी हैं, 16 कला अभी कोई बना नहीं है, जब तक विनाश हो तब तक पुरुषार्थ चलना है। क्या? जब तक इस पुरानी विकारी दुनिया का विनाश हो तब तक ये पुरुषार्थ चलता ही है। कौन सा पुरुषार्थ? पतित से पावन बने। ये पार्ट कब तक चलेगा? क्या एक बार पार्ट चल जाए तो नहीं पूरा होगा? किसी की भी ताकत नहीं है जो कहे कि हम 16 कला संपूर्ण बन चुके हैं। अभी बन ही नहीं सकते, क्यों नहीं बन सकते? इसलिए नहीं बन सकते कि जब तक ये 500 करोड़ की दुनिया का संघ है, वो वायुमंडल है, वो वातावरण के बीच में हम रहते हैं, तब तक एक ही संघ का रंग हमेशा लगता रहे ये हो नहीं सकता। क्योंकि मनुष्य आत्मा में ये परमात्मा से अंतर है कि मनुष्य आत्माओं को संघ का रंग जरूर लड़ता है और परमात्मा को संकरण नहीं लड़ता है। बड़े बड़े पावरफुल आत्माएं धरती पर आई, बड़े बड़े महात्माएं आए, संत आए, लेकिन सब इस शक्ति में संग के रंग में आकर के नीचे गिरते चले गए। ऊपर कोई नहीं था। एक परमात्मा बाप ये है जिसको लेपचेप नहीं लगता है। जिस समय कोई कर्मातीत बन जाए तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, सूक्ष्म बतन में जाकर के बैठना पड़ेगा। सूक्ष्म बतन में बैठने का मतलब है कि आचंड पाटदारी 84 जन्म लेने वाली पूरी आत्मा नहीं बनी। फायदा हुआ या घाटा हुआ? घाटा हुआ। परमात्मा पाप से तो डायरेक्ट वर्षा लेने वाले नहीं बने। राधा कृष्ण को वर्षा किससे मिलेगा? परमात्मा पाप से मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा, देवताओं से मिलेगा या सुप्रीम कोर्ट से वर्षा मिलेगा? देवताओं से वर्षा मिलेगा। तो हमको वर्षा किससे लेना है? हम तो वर्षा लेने वाले हैं डायरेक्ट परम पिता परमात्मा। सूक्ष्म बतन में जाकर के बैठना पड़े, मूल बतन में तो जा ही नहीं सकते। पहले ब्राह्मण है, पहले ब्राइड ग्रूम जाए, तब तो ब्राइड से जाएगी ना। पहले कौन जाएगा है? पहले दूल्हा जाए, साजन जाए, फिर सजनी आ जाए। दूल्हा कौन? जो बाबा अन्ना बिंदु। बिंदु तो सिर्फ आत्माओं का बाप है, उसका कोई दूसरा संबंध नहीं कहा जाएगा। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है सिर्फ। दूसरे संबंध तब बनते हैं जब वो साकार में आता है। तो पहले ब्राइड घूम जाए, तब ब्राइड जाएंगी मूल वतन। मूल वतन निसंकल्पी थे, जहाँ कोई संकल्प नहीं, सूरज चांद सितारों का कोई गम नहीं, किसी से कोई बात नहीं। एक शिव बाबा, दूसरा शिव। पहले ऐसी स्टेज में कौन जाएगा? ब्राइड ग्रूम। फिर सजनिया जाएंगे, उनसे पहले कैसे जा सकते हैं? तो बच्चों की बुद्धि भी इतनी दूरंदेज से चाहिए, इतनी जो इस बात की गहराई को समझ सके। अच्छा, मीठे मीठे चिकिले बच्चों प्रति मार पिता पाप दादा का याद किया, गुड मॉर्निंग रुआनी बापी रुआनी बच्चों, उनसे पहले कैसे जा सकते हैं? तो बच्चों की बुद्धि भी इतनी दूर अंदेर से चाहिए, इतनी जो इस बात की गहराई को समझ सके। अच्छा, मीठे मीठे चिकिले बच्चों प्रति मार पिता पाप दादा का याद किया, गुड मॉर्निंग रुआनी बापी रुआनी बच्चों।